अभिमन्यु इस वक्त चौधरी मेंशन में इशिका के साथ था। युविका इशिका को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु के गार्ड्स के बीच में दखल देने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। ऊपर से गार्ड्स ने अभिमन्यु को कॉल करके वहां बुला लिया था। इशिका सही सलामत थी ये देखकर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन युविका पैदा करने की कोशिश कर रही थी, ये देखकर अभिमन्यु का गुस्सा भी बेकाबू हो रहा था। अभिमन्यु ने अब पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि इशिका यही चाहती थी कि अभिमन्यु युविका के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए, पर अभिमन्यु के इरादे कुछ अलग ही थे। अभिमन्यु ने युविका को बात करने के लिए अंदर बुलाया था। वो अंदर पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अभिमन्यु को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें उभर आई थी, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और युविका की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, बात को घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधे सीधे बताओ आखिर चाहती क्या हो। युविका ने थूक निगला और हिम्मत बटोरकर कहा, अगर आप सब कुछ सीधे सीधे ही जानना चाहते हैं तो सीधे सीधे बता देती हूँ मिस्टर राजवंश, मुझे अपने दोस्त को इंसाफ दिलाना है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की आपकी पत्नी है। इसने किसी को नहीं मारा है, अभिमन्यु ने सख्ती से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु और युविका के बीच बातों के साथ साथ आंखों ही आंखों में एक जंग छिड़ी हुई थी। जहां युविका इशिका को किसी भी कीमत पर पुलिस के पास ले जाना चाहती थी, तो वहीं अभिमन्यु भी अपनी जिद पर आ गया था। उसके होते हुए इसकी ओर कोई नजर उठाकर भी देख ले तो उसकी इतनी मजाल नहीं थी। युविका ने गहरी सांस लेकर कहा, और क्या सबूत है आपके पास कि इसने ईशानी को नहीं मारा? अगर कोई सबूत भी है तो जाकर पुलिस को दिखाइए ना। अगर आपकी पत्नी इतनी ही सच्ची होती तो मेरी दोस्त की जगह लेकर यहाँ नहीं होती। युविका को लगा अभिमन्यु उसकी बात का जवाब देगा। युविका ने उसे अपनी तरफ से अच्छा जवाब दिया था। उसे लगा कि अभिमन्यु अब कुछ कहने लायक नहीं रहा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन पुलिस और बाकी दुनिया को सबूत देने होंगे उस दिन वो भी दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? आपकी यही जिद है तो यही सही, आप अपनी पत्नी को संभाल कर रखिए, लेकिन मुझे आप नहीं रोक पाएंगे मिस्टर राजवंश। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और ईशानी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इस घर में जो भी हुआ उसके बारे में भी उन्हें बताऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि आप अपनी पत्नी को कैसे बचा पाते हैं, युविका ने गुस्से में तेज आवाज में कहा। युविका जानती थी कि बातों के मामले में वो अभिमन्यु से जीत नहीं पाएगी, और ना ही पावर में उसकी इतनी हैसियत थी कि वो अभिमन्यु राजवंश के सामने खड़ी भी हो सके। ऐसे में कैसे भी करके उसे ये मामला मीडिया और पुलिस तक पहुंचाना था। पुलिस को भले ही प्रेशर में आकर अभिमन्यु कंट्रोल कर सकता हो, लेकिन मीडिया के सामने मामला आते ही अभिमन्यु कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी बात खत्म करके युविका जाने के लिए दूसरी तरफ पलटी ही थी कि अभिमन्यु ने तेज और सर्द आवाज में कहा, एक कदम भी बाहर निकाल कर दिखाओ मिस चौधरी, आई बेट यू अगले 24 घंटे में तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को रोड पर लाकर खड़ा कर दूंगा, भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु का ये बर्ताव देखकर ऋषिका हैरान रह गई थी। पिछली बार भी वो आशीष के कत्ल के मामले में फंसी थी, लेकिन उस वक्त अभिमन्यु काफी पेशेंस से सब कुछ हैंडल कर रहा था। आज न जाने उसे क्या हो गया था कि वो अपनी पावर और पोजीशन का फायदा उठाकर युविका को बर्बाद करने तक की धमकी दे रहा था। वहीं अभिमन्यु के शब्द सुनकर युविका के कदम वहीं पर जम गए थे। वो जल्दी से अभिमन्यु की तरफ पलटी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, जबकि अभिमन्यु के चेहरे के भाव इस वक्त बेहद सख्त थे। तो आप पैसों के दम पर अपनी पत्नी के गुनाह को छुपाना चाहते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर राजवंश। लोग आपके बारे में कितना भी भला बुरा क्यों ना कहें, लेकिन हमेशा यही लगता था कि वो आपकी गलत इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सही कहते थे। युविका ने गुस्से में अपनी भड़ास अभिमन्यु पर निकाली। अभिमन्यु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा, फर्स्ट थिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, सेकंड थिंग इसने उसे नहीं मारा है, अगर इन केस इसने तुम्हारी दोस्त को मारा भी होता तब भी मैं इस पर एक उंगली भी नहीं उठने देता। बोलते हुए अभिमन्यु ने इशिका का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। फिर वो युविका की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं उस लम्हे को फिर से महसूस भी नहीं करना चाहता जो मैंने तुम्हारी दोस्त की वजह से झेला था। यू नो व्हाट, हमारी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन न जाने वो बीच में कहां से आ गई और अपने पीछे लगे कुछ आदमियों को उसके पीछे भी लगा दिया। वो लड़की अच्छे से जानती थी कि उसकी जान को खतरा था, अगर वो इशिका के करीब आई तो वही खतरा उसके ऊपर भी आ सकता था, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर इशिका से मिली। किस्मत अच्छी थी जो इसे कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हारी दोस्त जिंदा होती और उसकी वजह से इसे कुछ हो जाता तो उससे जुड़े हर एक शख्स को बर्बाद कर देता मैं, और आई रियली मीन इट। जो चीज इशिका युविका को नहीं समझा पाई थी वो अभिमन्यु ने अपने जज्बातों में आकर उसे सब कुछ बता दिया था। हाँ, ईशानी की वजह से ही इशिका की जान खतरे में आई थी, वरना शायद ही आदर्श राधिका को खोने के ख्याल से इशिका को चोट पहुंचाने के बारे में सोचता। उसे इशिका से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस डर था तो इस बात का कि अगर राधिका के सामने ईशानी के जिंदा होने का सब सामने आया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इशिका वहां खड़ी सब कुछ सोच रही थी कि अभिमन्यु के इस सख्त बर्ताव का कारण क्या है, और उसे अब सब समझ आ गया था। अभिमन्यु को उसे इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि वो उसे खोने के ख्याल तक से डरता था, चाहे इसके लिए उसे कितना भी गलत क्यों ना करना पड़े, पर वो हमेशा इशिका को प्रोटेक्ट करेगा। युविका की आंखों में आंसू थे, उसने सिर हिलाकर कहा, मेरी दोस्त वो सब होना डिजर्व नहीं करती थी। अगर इसने उन्हें नहीं मारा है तो कम से कम उनके कातिलों का तो पता होना चाहिए ना हमें, पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। क्या लगता है मिस चौधरी, तुम्हारे पुलिस की पहुंच मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव्स और स्पेशल एजेंट से ज्यादा है? वो आज तक नहीं ढूंढ पाए और तुम्हारी पूरी पुलिस ढूंढ लेगी, अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु भले ही कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, लेकिन जिन हालातों में युविका को इशिका मिली थी उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो उसकी बात पर यकीन करे। युविका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो जिस दिन कातिल आपको मिल जाए पुलिस के हवाले कर दीजिएगा, आप मेरे घर से बाहर जाइए। और आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ जो मुझे ये नहीं समझ आएगा कि हमारे यहाँ से निकलते ही तुम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने वाली हो, अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा। युविका का प्लान कुछ ऐसा ही था। अभिमन्यु को समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा। युविका ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, ठीक है, मान गई, तुम हो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तो क्या मुझे अपने घर में बंदी बनाकर रखोगे? कितने दिनों तक तुम दोनों यहाँ पर मुझे होस्टेज बनाकर रख सकते हो? आज नहीं तो कल मेरे घर वाले आ ही जाएंगे। मैं तय करूंगा कि आपकी फैमिली यहाँ कब और कैसे आएगी, अभिमन्यु ने उसे सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युविका कड़वाहट से हंसने लगी। अभिमन्यु अब तक उसे ही ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन अब तो वो उसकी फैमिली पर भी आ गया था। युविका आगे कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु ने गार्ड को इशारा किया और उसे अंदर ले जाने को कहा। युविका चिल्लाती रही पर गार्ड उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगे। युविका अंदर जाते हुए चीखते हुए बोली, नहीं है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन अभिमन्यु राजवंश, 5 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ आ जाएगी, तब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कोई नहीं बचा पाएगा।
अभिमन्यु ने युविका को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, तो वहीं इशिका की नजरें उसी की तरफ थीं। कुछ ही देर में युविका की चीखें भी शांत हो गई थीं, क्योंकि गार्ड्स ने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया था। वो उसकी निगरानी के लिए उसके कमरे के आगे खड़े हो गए थे। उन सबके वहां से हटते ही इशिका ने नाराजगी भरी निगाहें अभिमन्यु पर डाली और धीरे से कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और वो तुम्हें पुलिस के पास लेकर चली जाए? अगर ये मामला मीडिया में गया तो और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा, फिर से वही होगा जो आशीष दास के टाइम हुआ था। उस वक्त भी मैं तुम्हारे लिए चुप था, क्योंकि तुम चाहती थी कि आयशा को ट्रैप किया जाए, लेकिन वो काफी स्मार्टली उन सबसे बचकर निकल गई थी। इस बार अगर ये मामला बाहर आता तो मीडिया के साथ साथ राजवंश फैमिली को एक और मौका मिल जाता हम पर उंगली उठाने का, अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया और फिर अंदर जाने लगा। अभिमन्यु के रवैये से इशिका समझ गई थी कि इस बार अभिमन्यु उसकी एक नहीं सुनने वाला है। अभिमन्यु अपना सारा कामकाज छोड़कर इस वक्त चौधरी विला के लिविंग एरिया में बैठा था, वहीं इशिका बाहर थी। इशिका ने गहरी सांस लेकर कहा, कम से कम दिशांग से बात करके उसका हालचाल पूछ लेती हूँ, इस वक्त अभिमन्यु से कुछ कहा तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। इन सबके बीच उसे दिशांग से बात करने का मौका तक नहीं मिला था, पर उसे अभिमन्यु पर यकीन भी था कि कहीं ना कहीं उसने सब कुछ संभाल लिया होगा। उसने तुरंत दिशांग को कॉल किया। दिशांग ने कॉल पर इशिका को सब कुछ बता दिया था कि कैसे मर्चेंट फैमिली का एक शख्स उसे ढूंढ रहा है। इशिका ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें उसे मेरे बारे में बता देना चाहिए था, उसके जरिए कम से कम मैं मां तक पहुंच सकती थी। वो आदमी एक सनकी था और मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, प्लीज आप इन सबसे दूर रहिए। अगर वो आदमी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करता है तो वो मिसेस सिंघानिया को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी भी फैमिली मेंबर है, दिशांग ने उसे समझाते हुए कहा। अर्पित से मिलने के बाद उसे खतरे का अंदाजा हो गया था और वो नहीं चाहता था कि इशिका किसी प्रॉब्लम में पड़े। वैसे भी उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी, बस अभिमन्यु के आने के बाद थोड़ी बहुत चीजें ठीक होने लगी थी। मैं देख लूंगी, तुम बस अपना ख्याल रखो, इशिका ने बात को टालने के लिए कहा और कॉल कट कर दिया था। दिशांग भी समझ गया था कि इशिका इस मामले में इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। दिशांग से बात करके इशिका अंदर गई तो अभिमन्यु अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने अपने आदमियों से काम करने का सामान मंगवा लिया था। इशिका उसके पास जाकर बैठी, लेकिन अभिमन्यु उसे इग्नोर कर रहा था। इसका मतलब साफ था, अभिमन्यु इशिका से भी गुस्सा था। जब से उनकी शादी की सच्चाई सामने आई थी, ये पहली बार था जब अभिमन्यु को इशिका पर गुस्सा आया था। इशिका ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर वो किचन में चली गई। उसने अभिमन्यु और अपने लिए कॉफी बनाई। वो कॉफी के साथ नीचे पहुंची और उसने आसपास खड़े गार्ड्स को वहां से दूर हटा दिया था। इशिका ने कॉफी का एक मग अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा है तुम्हें? मुझे इतना ही गुस्सा आता है मिसेज राजवंश, यू आर लकी कि मैं तुम्हारे साथ काफी पेशेंसली और प्यार से बिहेव करता हूँ, लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निकाल लिया। अभिमन्यु ने सख्त आवाज में जवाब दिया। उसने इशिका के हाथ से कॉफी मग ले लिया था। ये देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु की इस नाराजगी में भी उसका प्यार छुपा हुआ था। इशिका अभिमन्यु के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, उसने अपनी दोस्त को खोया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो क्या चाहती है? उसने अपनी दोस्त को खोया है तो मैं अपने प्यार को खो दूं? तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मैं क्या महसूस किया था जब कॉल पर मैंने ये सुना था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही हो, अभिमन्यु ने भारी आवाज में कहा। उसने कॉफी का मग टेबल पर रख दिया था और फिर इशिका की तरफ इंटेंसिटी से देखा। अभिमन्यु की आंखों से उसके जज्बात साफ जाहिर हो रहे थे। अभिमन्यु ने अपनी आंखें कसके बंद की और फिर कुछ देर बाद में उसने इशिका के गाल पर हाथ रखकर नरमी से कहा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरा यकीन करो, दादी के अलावा अगर मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो सिर्फ तुम हो। ना मैं उन्हें खोना अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें। और तुम भूल रही हो इस बात को कि तुमने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन तुम्हारी जान खतरे में आएगी उस दिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। लेकिन मेरी जान को अभी कोई खतरा नहीं है, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि सच में मैं उस दिन का वेट करूं जब सच में तुम्हारे ऊपर खतरा आए, अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, जिस पर इशिका हल्का सा हंस पड़ी। अभिमन्यु ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शरारत नहीं सोच रही है? हंसना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या होगा मिस्टर राजवंश, मुझे भी मिस चौधरी की तरह कमरे में बंद कर देंगे? मुझे भी कैद करके रखोगे? इशिका ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा और अभिमन्यु ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब दे दिया था। उसने इशिका को कैद तो कर लिया था लेकिन अपनी बाहों में, और इशिका कुछ कह पाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसके लबों को कैद कर लिया था। जहां इशिका और अभिमन्यु अपने लम्हे में खोए हुए थे, वहीं उनसे अलग युविका अपने कमरे से बाहर जाने का रास्ता निकाल रही थी। कोई कुछ भी कहे, ईशानी उसके लिए बहन से बढ़कर थी। वो कुछ भी करके उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी, फिर चाहे उसके सामने खुद अभिमन्यु राजवंशी क्यों ना खड़ा हो।